महान महान दिन बीत रहे हैं हमारे ध्यान में। एक प्रश्न आया है, हमारे विद्यार्थी का ही है, भूतपूर्व रमेश चंद्र जैन, पंडित रमेश चंद्र जैन, और लोगों के एक दो मेरे पास आए थे इस चर्चा करने, जो कल के व्याख्यान में लोगों को कुछ ऐसा लगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि केवली भगवान भी अज्ञानी होते हैं, जबकि मैंने ये पढ़ के सुनाया था पूरा, और उसे मैं दोबारा पढ़ के अभी सुनाऊंगा। मैं जहां तक समझता हूं, जिस वाक्य से उन्हें ये भ्रम खड़ा हुआ है, वो ये वाक्य था कि जो मैंने कहा था कि जरा देखो तो केवल ज्ञानी हो गए, और उनके भी जो योग होता है और उसको उस योग को भी अज्ञान भाव में ले रहे, मतलब उनके योग को नहीं। क्या अभी आप द्वारा सीडी में है, वो उसे आप सुनेंगे, तो यही बात कही थी, और उससे लोगों को ये भ्रम खड़ा हो गया। और ये मैंने पढ़ के सुनाया था, मैं द्वारा सुनाता हूं। देखिए, आप निकालिए पेज नंबर 217 का तीसरी लाइन। अतः अब यह प्रश्न यह होता है कि अवरद आदि को ज्ञान भाव माने या अज्ञान भाव, है ना? ये प्रश्न है, मिल गया आपको किताब में? अरे भाई, सीधी सरल बात है, यानी मैं इसे कितनी सीधी सरल बात मानता हूं कि अज्ञानी के अवरत आदि भाव अज्ञान भाव है, क्योंकि उन्हें वह निज के मानता है, निज रूप मानता है, उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है, जानता है, और ज्ञानी के जो भूमिकानुसार अवरति प्रमाद कसाद आदि पाए जाते हैं, वे सभी ज्ञान भाव में ही आते हैं, क्योंकि ज्ञानी का उनमें एकत्वमत्व तो नहीं है, उनका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता है। यही अंतर तो है ज्ञानी और अज्ञानी में, कितना कलश में कितना स्पष्ट है, ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। तो ये थोड़ी कहे ज्ञानी के भाव अज्ञानमय है, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो तो ये अपेक्षाएं कैसी कैसी विचित्र हैं, कि जो केवली के लिए होता है योग, और जिसकी वजह से उन्हें सहयोग केवली कहा जाता है, क्या उसको भी यहां ये अज्ञान उस योग को, केवली के योग को नहीं, वो सामान्य योग को यहां अज्ञान भाव में कहा जा रहा है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, यहां अज्ञानी के अवरति आदि भावों की चर्चा है, और ये तो मानो कितने पुराना लिखा हुआ है, मैंने बोला था ये लिखा है 92-93-94 का लिखा होगा, इस कारण उन्हें अज्ञान भाव में शामिल किया जा रहा है। आत्मख्याति टीका और चेतन जी छाबड़ा के भावार्थ में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं। क्या ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ अज्ञान का उदय, उसे वो ज्ञान भाव और अज्ञान भाव क्यों कह रहे, क्योंकि ज्ञान में उसका स्वाद आ रहा है, ज्ञानी को स्वाद ही नहीं आता उसका। ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय इत्यादि कथन से यह स्पष्ट है कि अज्ञानी का ज्ञान उन्हें अपना जान रहा है। ज्ञानी की पर्याय में भूमिकानुसार विद्यमान अवरति कसायादि के उदय ज्ञानी के मात्र गे बनकर रह जाते हैं, स्वाद रूप नहीं होते। इनकी अपने व्याख्या भी की थी कल, ज्ञानी उन्हें अपना नहीं जानता, यही कारण है कि ज्ञानी का उन्हें जानने रूप परिणमन ज्ञान भाव में ही आता है। आत्मख्याति टीका के अंतिम पैरा में और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में समागत तथ्य भी ध्यान देने योग्य है, उनमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव इस प्रकार है। ये कल अपन ने पढ़ लिया था, और अब वो बात कह रहे हैं कौन सा, कि पुराने कर्म का उदय नए कर्म के बंध का कारण है, बीच में आत्मा को काय को लपेटते हो, ये प्रकरण। अब इसमें गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 218 पर। है ना, इस प्रकरण का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, यहां पर यह सिद्ध करना है कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का कारण होता है। कितना स्पष्ट लिखा है देखो, वो बीच में वो बात हटा ही राग वाली कि ये सिद्ध करना है, वो आता है कहते जो कथन चला आ रहा है और ये गुरुदेव ने उसमें से निकाला, आप सब छाती पे हाथ रख कर देखो कि गुरुदेव यदि ये नहीं निकालते तो हम में से कौन कौन ये निकाल सकते थे। और आप जो पूरा सुनते हो और 10,000 पेज गुरुदेव के मौजूद हैं और पढ़ते हो, ये निकाल पाए, हमने उसमें से वही कोटेशन निकाल के यहां रखा। इन गाथाओं पर 20-20, 25-25, 40-40 पेज होंगे गुरुदेव के प्रवचनों के, और हमें तो सिर्फ 10 लाइनें देनी है। तो वे 10 लाइनें कौन सी देनी, उनमें से वो 10 लाइनें निकालना बहुत कठिन काम है। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं, बिल्कुल सच्ची गुरुदेव के सामने घटित हुई थी कि जब मैं 47 शक्तियों की चर्चा करता था, तब शायद लिखी तो नहीं गई थी, गुरुदेव मौजूद थे, तो मैंने ये कहा भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, ये 6 शक्तियां 6 द्रव्यों में पाई जाती हैं। है मोटानी जी को याद है, कहा क्रमबद्ध पर्याय में ये मैंने कोट किया है और उसमें लिखा है, और क्रमबद्ध पर्याय लिखी गई थी, किताब आ गई थी अपन को 79 में, जब अपन गुरुदेव के साथ नैरोबी गए थे ना, उसके पहले वो किताब छप गई थी और लिखा होगा उसके साल दो साल पहले। तो मेरे को नेमीचंद जी पाटनी, बाबू भाई मेहता और यहां तक कि खेमचंद भाई सबने कहा आज तुम्हारी पिटाई होने वाली है। अरे ये तो आत्मा की शक्तियां हैं, सारी दुनिया जानती है समय सारे उसमें, और तुम ये कह रहे हो कि 6 द्रव्यों में पाई जाती हैं, ये बात तुम्हारी आज पकड़े जाने वाले हो तुम। मैंने कहा कि इसे हटा दो आप, क्रमबद्ध पर्याय की किताब छपी नहीं थी जब वहां पढ़ी जाती, इसे आप हटा दो। मैं पढ़ता था, रखम चंद भाई को पढ़ाता था, बाबू भाई को पढ़ाता था, पाटनी जी सबको, आज भी मेरी आदत है कि यदि मैं 4 पेज लिख लेता हूं, 2 पेज लिख लेता हूं तो बड़े ज्यादा को देता हूं कि आप पढ़ो, अन्ना जी को दे देता हूं, और जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड होते हैं उनको भी दे देता हूं पढ़ो, सब ऑफिसर सरवंती जी को दे देता हूं। तो जैसे प्रोग्राम जी में लिखा ना, वे पढ़ते गए हम लिखते गए और हम पढ़ते गए, ऐसा होता है। तो सबने कहा यह हटा, मैं तो नहीं हटाऊंगा, ये तो पक्की बात है और मेरा कोई पक्का निर्णय है कि ये 6 द्रव्यों की शक्तियां हैं। तो चलो ही गुरुदेव के पास चलते हैं, अब तुम जिद पर अड़े ही हो, गुरुदेव के सामने गलती नहीं निकलेगी तो अपनी गलती कहां निकलेगी, हम हटा देंगे तो गुरुदेव के सामने बात कभी आएगी नहीं, तो इस पर चर्चा ही नहीं होगी, इसलिए चर्चा हो जाए और निकलने आए हो तो निकाल देंगे, लेकिन आप लोगों के कहने से मैं नहीं निकालूंगा, है ना। मैंने कहा सुबह गुरुदेव के सामने पढ़ा जाना है, तो मैंने गुरुदेव के सामने ये पढ़ करके मैंने कहा गुरुदेव के सामने जाना तो वही जिम्मेवारी का काम है, डर तो बहुत लेता, सब लोग रात में सोए, मैं रात भर जगा, और 700 पेज की आत्मसिद्धि शास्त्र था गुरुदेव का, है ना, तो 47 शक्तियों का, और मैंने मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना था, घबराना नहीं, क्योंकि मुझे तो वो 6 शक्तियों के बारे में पढ़ना था, तो उसमें भी 100-150 पेज थे, उनमें मुझे 4 लाइनें मिल गई, आज भी होंगी वो देख लेना, जिसमें ये लिखा था कि ये 6 द्रव्यों में है ये शक्तियां। वो जब मैंने लिखा, मुझे पहले नहीं मिली थी वो, मैंने गुरुदेव का देख के नहीं लिखा था, मैंने अपने विवेक से निर्णय करके लिखा था, और बाद में वो मुझे मिल गई और मैंने फिर बाबू भाई को, पाटनी जी को, सबको बताई। ऐसे तो देखो गुरुदेव थोड़ी, तुमने जो प्रवचन कोई लिखता है तो बाद में गुरुदेव थोड़ी देखते हैं, वही तो किसका काम है, हरि भाई का काम है, और हरि भाई के बाद मामले में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। आप समझ गए, आपको मालूम है, मैं उस चक्कर में अभी नहीं जाना चाहता हूं। ये सब अभय कुमार जी वगैरह सबको मालूम है, ये सब घटना, ये शांति जी वगैरह सब, क्योंकि सब यहां पढ़ते थे। ये विद्यालय खुला था कितने, 77 में, और ये 78-79 की बात है। एक साल पहले आत्मधर्म मेरे पास आया था, एक साल बाद महाविद्यालय खुला। तो मुझे मिल गए तो मेरी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बताई। फिर भी गुरुदेव के सामने जब वो हिस्सा पढ़ा, फिर हम पहले पूरी किताब गुरुदेव के सामने पढ़ते थे, बाद में छपाते थे, इसलिए हमारी किताबें सब गुरुदेव के सामने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद फिर समझ लो कि गुरुदेव पढ़ने के लिए नहीं रहे, तो अपन में भी उतनी क्षमता आ गई कि अभी नहीं बताए तो अभी वो गलत नहीं निकले। फिर गुरुदेव के सामने वो पढ़ा, चुपचाप सब चुपचाप बैठे रहे और गुरुदेव भी सुनते रहे और कुछ नहीं कहा, पास हो गया। तो मैंने कहा कि गुरुदेव श्री, ये आपके, मैंने इसमें ऐसा लिखा है कि ये 6 द्रव्यों की शक्तियां हैं, ये लिखा है इसमें, जबकि ये आत्मा की शक्तियों के बारे में वर्णन है वहां। तो हाँ ठीक है ना, माने वो 4 पंक्तियां भी गुरुदेव के ध्यान में थी। ऐसा मान लेना कि भाई वो जो किसी दूसरे ने लिख दी होगी, और ये सारे गुरुदेव के साहित्य को अप्रमाणित सिद्ध करना है, इसलिए मैं बहुत कड़क हूं इस मामले में कि आप कहां लिखा है बताइए। गुरुदेव में दादा ने पूरा पंचांशी का अनुशीलन लिख लिया। अब दिक्कत क्या थी कि वो जो पुराने गुरु प्रसाद, उनमें गुरुदेव के प्रवचन गुजराती में हैं, उनने मेहनत कर करके उसमें से पढ़ पढ़ करके और उसका हिंदी अनुवाद कर करके उसमें कोटेशन दिए, अब ये छपे नहीं, तो उसमें कहीं नहीं लिखा, कहीं तो ये नहीं लिखा कि कौन से पेज पे कहां से लिया। तो मैंने कहा कहां से लिया, तो उसमें है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर तो कोई भी कह देगा कि ये गुरुदेव का कोटेशन है। ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि वो हस्तलिखित प्रति लिखो उसके फला पेज पर। अब सामने खोजने वाला खोजेगा, उसकी जिम्मेवारी है, नहीं खोजा तो हमारी जिम्मेवार नहीं है, वो कॉपी उसे नहीं मिले। लेकिन हम तो लिखें, आपने तो कहीं से लिया है ना, आपने अपने मन से तो नहीं बनाया है ना। अब वो कितना बड़ा काम हो गया, पूरा का पूरा फिर एक को देखो, ख्याल नहीं ना, और फिर उसको लिखो, फिर तो भी चलने नहीं दिया। अभी दादा वही कर रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा क्या, क्योंकि उससे प्रमाणिकता भंग हो जाएगी। रिसर्च का तरीका ये है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कौन सी प्रति में कहां से, कितने प्रति कहां से आपने ये लिया है। आप ये कह रहे हैं ना कि गुरुदेव ने कहा है, आप अपनी तरफ से कहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन गुरुदेव का कोटेशन है तो कहां से लिया है, ऐसा प्रश्न हर जगह खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए जब ये प्रश्न आएगा गुरुदेव के प्रश्न छपे, तो एक दफे कहते नहीं आसा, ये निकाल दो, ये निकाल दो, एक दफे निकालने का धंधा शुरू हुआ तो वो अखंड नहीं रह पाएगा। और उनमें जब तक कोई बड़ी बात नहीं हो, तब तक उनमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये बहुत समझदारी का काम नहीं, बहुत नासमझी का काम है। सारी जिनवाणी फिर अप्रमाणिक हो जाएगी, फिर तो आप हमारे में अप्रमाणिक करना, हम आपके में अप्रमाणिक करेंगे। इसलिए पूरी प्रमाणिकता के साथ उसे लिखा जाना चाहिए। तो वो फिर वो लिखा भी मिल गया और गुरुदेव ने उसे कन्फर्म भी किया। तो ऐसी तो गुरुदेव इसकी बात अपन पढ़ रहे थे। यहां पर यह सिद्ध करना है कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का कारण होता है। इतना स्पष्ट है और ऊपर अमृतचंद्र में और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उनने ये पकड़ लिया। अब उनने अपन को बता दिया तो अब अपन भी निकाल सकते हैं उसमें से। यदि ये पता नहीं होता तो नहीं निकाल सकते थे। لیکن ہم تو پرتن رتنا کر بھی پڑھ لیے, رکھ اکثر بھی پڑھ لیے اور سن لیے, اور ہمیں نہیں آتا دھیان میں. وہ کرنان یوگ والے اتنی آسانی سے تھوڑی مانیں گے. متھات تو اورتی آدی جو پورو بدھ کرم ہیں ان کا ادے نبین بند کا کارن ہے نا. پرنتو جو جیو سویم متھات اورتی اور اجان بھاو روپ سے پرنمت ہوتے ہیں ان کو ہی پورو کرم ادے کا نمت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جو جیو میں راگ دیش ہوئے تو ان کا نمت کون ہے, کہ جو راگ دیش روپ پرنمت ہوتی ان کو پورو کرم نمت کہا جاتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کرم کا ادے آئے گا تو اس میں ڈگری ٹو ڈگری ہم کو راگادی روپ پرنمت ہونا ہوگا, ایسا نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا تو موکش مارگ بند ہو جاتا, کرم کا ادے تو انادی سے ہے ہی. ارے متھات کرم کے ناس متھات کرم کے ادے کے رہتے ہوئے کیا جاتا ہے. یعنی متھات کرم کے ادے میں متھات کرنا انواری ہوتا جیو کو تو اس کے ناس کا کام اس کے ادے میں کیسے ہوتا. اور اس کے لیے جو ادھارن دیا جاتا تلک کا, جب بھارت غلام تھا اور ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کے راج میں کہتے سورج نہیں ڈوبتا, تو اپنے کو لگتا کہ کیسے پاگل لوگ ہیں سورج نہیں ڈوبتا جن کے راج میں. لیکن آج تو وہ ہاتھ پہ رکھے آملے جیسے سدھ ہو گیا. جہاں جہاں ان کا راج تھا اپنا پلین ایسے چکر کاٹتا رہا آکاش میں پرتھوی کے پورے, تو کبھی رات آئی نہیں. بس صرف وہ رفتار اتنی ہونی چاہیے جتنی سورج کی ہوتی ہے. بارہ گھنٹے کا تو اپن نے دیکھا نا ہے کماری, کہیں تو اپن جاتے ہیں. ایک دفعہ تو ہمارا ایسا ہوا کہ ہم جاپان سے 13 تاریخ کو بیٹھے اور امریکہ میں سان فرانسسکو میں 12 تاریخ کو پہنچ گئے. اب آپ مانو گے کیا کہ اگلی مہینے کی نہیں, سچی گھٹنا ہے. کیوں کہ وہاں 19 گھنٹے کا فرق ہے. جاپان امریکہ سے 19 گھنٹے آگے ہے اس ایریے سے جہاں ہم پہنچے تھے سان فرانسسکو میں. اپن 12.5 گھنٹے ہیں, انڈیا 12.5 گھنٹہ آگے ہے وہاں سے. تو وہاں سے جب ہم بیٹھے جاپان سے اوساکا ایئرپورٹ سے, تو وہاں 13 تاریخ ہو گئی تھی کہ شام کو اڑے ہم. اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہ 8-10 گھنٹے کی فلائٹ تھی, 8-10 گھنٹے سے بھی کم ہوگی شاید, ہے نا. اور وہ 19 گھنٹے کا فرق تھا تو 12 تاریخ کو پہنچ گئے. تو وہ جو ان کے راج میں سورج نہیں ڈوبتا تھا وہ کوئی کالپنک ایسی کہانی نہیں تھی, فیکٹ تھا. امریکہ میں بھی ان کا راج تھا, ہندوستان میں بھی ان کا راج تھا, جاپان بھی ان کے قبضے میں آ گیا. میرے مطلب کہنے کا آسے ہے کہ پرتھوی کو ایسے جاؤ تو وہ چکر کاٹو تو سب جگہ ان کا راج تھا. اور اس وقت ان نے کہا کن نے کہ سوتنترتا ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے. فیلنگ کیا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ان کے غلام ہونے کے کال میں اور غلامی غلاموں نے توڑی ہے. غلام ہی توڑیں گے نا, جیل میں بند قیدی جیل کو تو دے ہی توڑیں گے. کیوں کون توڑے گا؟ اس لیے متھات کی غلامی میں ہی متھات کا ناش کیا جاتا ہے. متھات کا ادے رہتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ یدی ڈگری ٹی ڈگری, ایک گرودیو کے شبد ہیں, کہ کرم کے ادے میں ڈگری ٹو ڈگری وکاری بھاو ہمیں کرنا پڑے یہ ضروری نہیں ہے, اور اسی میں موکش کا مارگ کھلا ہے. اب الٹا لو, لیکن تم یدی راگادی بھاو کرو گے تو کرم تو ڈگری ٹو ڈگری ہی بنیں گے, اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہماری کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم راگ آدھی کرتے رہیں اور کرم نہ بنے. ہم ایسی ترکیب کھوجنے کے چکر میں ہیں کہ ہم یہ سب کرتے رہیں کیا پاپ کرتے رہیں اور پاپ نہ بنے. سمجھے؟ کرم کرتے رہیں اور کرم نہ بنے. ہم جہاں کہیں سمبھو نہیں ہے ہم اس دشا میں پرتن کر رہے ہیں, کبھی سفلتا نہیں ملے گی. اور سمبھو کہاں ہے کہ جو کتنا تیور ادے تھا اساتا کا پتھر, بنا اساتا کرم کے ادے کے برستے ہیں, پاسناتھ پہ برسے نا, اور اگنی میں کوئی ہمیں جلائے, پانڈووں کو جلایا, تو بنا کرم کے ادے میں کوئی جلا سکتا تھا؟ وہ جن نے وہ کرے پہنائے تھے وہ تو بہرنگ نمت تھے, انترنگ نمت تو کرم کا ادے تھا کہ نہیں تھا ان کا؟ تو اس ایسے اکیلے جلتی ہوئی آگ میں ہم شدھ اپیوگ نہیں کر سکتے ہیں, یہ بات تو ہے ہی نہیں. اس کرم کے ادے میں بھی ہم شدھ اپیوگ کرنے سے ہمیں کوئی ونچت نہیں کر سکتا. یہ راستہ کھلا ہوا ہے. جو ابھی پڑھتے ہیں سب لکھے اس میں آئے گا سب, وہ تو میں آگے پیچھے سے پڑھ لیتا ہوں نا اور بار بار سوچتا رہتا ہوں, اس لیے پھر وہ مجھے پہلی پلین پڑھتے ہی سب آ جاتا ہے تو منہ سے نکلنے لگتا ہے, تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور بعد میں آپ کے بھروسے کے لیے پڑھ دیتا ہوں. متھات تو ابرتی آدھی جو پورو بدھ کرم ہیں ان کا ادے نوین بند کا کارن ہے, پرنتو جو جیو سویم متھات ابرتی آدھی اگیان بھاو روپ سے پرنمت ہوتے ہیں ان کو ہی پورو کرم کا ادے نمت کہا جاتا ہے. وہ نمت کیوں کہتے ہیں؟ نمت کیوں کہتے ہیں؟ نمت سے ہوتا تھوڑی کچھ ہے. جب ان کو راگ روپ پرنمت ہو گئے تو اسے نمت کہہ دیا, اور نہیں ہوتے تو وہ گئے نمت. پھر نمت تو ہے ہی وہ ادے ادے ادے. ارے بھیا نمت تو کاری ہو تو اس کا کہا جاتا ہے, جب یہاں کاری نہیں ہوا تو نمت کس کا؟ کیوں ایک آدمی کی شادی ہو جائے تو چار پانچ برس میں تو باپ بن جاتا ہے نا؟ کیوں چار پانچ برس میں؟ دس برس میں تو بن ہی جاتا ہے نا, تو دس برس تو اسے باپ کہہ سکتے ہیں نا؟ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جنیند؟ ارے بیٹا پیدا ہوئے تو کہہ سکتے ہیں نا, اور بچہ ہوئے ہی نہیں تو باپ کس کا؟ جب کاری ہوئے ہی نہیں تو نمت کس کا؟ کہ صاحب میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, تیری کسر چھوڑنے پر نہیں چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو تو باپ جب کہلائے گا کہ جب تیرے بچہ ہوگا, اور نہیں ہوگا تو تم باپ نہیں کہلائے گا. سمجھے نا؟ تو کیا پتہ متھات عورتی آدھی جو پورو بدھ کرم ہے ان کا ادے نوین بدھ کا کارن ہے, پرنتو جو جیو سویم متھات عورتی آدھی اگیان بھاو روپ سے پرنمت ہوتے ہیں ان کو ہی پورو کرم کا ادے نمت کہا جاتا ہے. بھائی باپ تھوڑی سوکشم ہے, دیتراک سربگ کا مارگ الوکک ہے, لوگوں کو یہ سننے کو نہیں ملا, اس کان کٹھن لگتا ہے, پرنتو سنتے سنتے سلبھ ہو جاتا ہے, سرل لگنے لگتا ہے. پہلی دفعہ بہت ادبھت لگتا ہے, اور دو چار دفعہ سن لو تو آپ کے لیے بالکل صاف ہے, بالکل بالکل بات ہو جاتی ہے. اور اس میں سے ایک بات نکلتی ہے کہ جب گردے شری یہ بول رہے ہوں گے, جب ان کے سامنے پگڑی صاحب لوگ جو بیٹھے ہوں گے, تو ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کی. گردیو شری کو ہم نے دیکھا ہے, جب یگل جی ہم لوگ پہنچتے تھے تب وہ بہت کھلتے تھے, اور وہی وشے ہو تو دوسرے سمجھتے ہیں. ان کو ایک دو سمجھنے والے آ جائیں جو انہیں بھروسہ ہوتا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پوری بات ان کے خیال میں آ جائے گی, پھر دیکھو ان کا رنگ. اور ان کو یعنی یہ سمجھ میں آ جائے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بیچ بیچ میں یہ زیادہ آئے گا. اس پیسے پرماتم وہ تاریخ نکالی جا سکتی ہے کہ یہ پروچن کون سی تاریخ کا ہوگا. سمجھے نا. اور یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس وقت کوئی کون کون شروتا وہاں بیٹھے ہوں گے. یہ میں پوچھتا ہوں بار بار ان کے پرچنوں میں آتا نا, سیفیا ہے کہیں پڑی نہ تھی, سادہ ایسے نہیں ہے, بس کہتا ہوں پڑ گئے ہیں تاکہ یہاں بیٹھ گئے ہیں, اس سے تھوڑی کچھ کام ہو جاتا ہے. اور یہ کہاں سے آ گیا, یہ بیچ میں کون سے سمے ساری گاتھا میں لکھائی. کیوں بولو بولو, لکھا کار میں سے لکھا ہے, یہ سبھا میں سے نکلا ہے. پرانے کرم کا جو ادے آ جو بول اپنی بات نہیں بھولتے, لوٹ کے وہیں آ جاتے ہیں. پہلے ہی دو بات کے بیچ میں بول دیے جو کمنٹ نے کہہ دیے کیوں, اور پھر اپنی بات وہیں پہ وہیں آ گئے. وہ گھونٹتے رہیں گے گھونٹتے رہیں گے. یدی گرودیو نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو یہ سمجھا ہوتا کہ یہ سامنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے تھوڑے دو تین کہانی قصہ سنا دو. اور وشے بدل دیا ہوتا تو اپنا کتنا نقصان ہو جاتا. ان سب وکتاؤں کو بولتے ہیں جو بس سبھا کو دیکھ کر کے اور سب کہانی کسے سنانے لگ جاتے ہیں کہ وشے بدل دیتے ہیں. ارے بھائی کیسا سبھا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے اور سرل کر کے سمجھاؤ, ادھار دے کے سمجھاؤ, آگم بتا کے سمجھاؤ. لیکن وشے بدل دو یہ کہاں سے لائے, کیا ہم وشے نہیں بدل سکتے. وشے تو ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہی سمجھائیں گے. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ بولو, ہم اسے اور سرل کریں گے سہج کریں گے. اور جب آپ کی ساری سبھا کہنے لگ جائے کہ ہاں بہت اچھا سمجھ میں آ گیا تب بنیں گے. لیکن وشے ہوتا ہے وکتا کا اور بھاشا ہوتی ہے شروتا کی. کیونکہ شروتا کی بھاشا نہیں ہو تو پھر وہ سمجھیں گے کیسے, اور وشے شروتاؤں کے حساب سے ہونے لگ جائے تو پھر تتو گیان کا پرچار ہوگا کیسے. کیونکہ یہ شروتا تو اپنے منورنجن کے لیے ہی کہیں گے, کیوں کوئی بات کرائیں گے کیوں. اپنے گھر میں بھی بھاشا چلتی ہے بچوں کی اور بھاو چلتا ہے ماں باپ کا. دھرم کے درشن کتاب میں نے لکھا ہے جب کوئی آدمی بچے سے یہ کہتا ہے ممی کو بلانا تو آج تک کسی بچے نے یہ پرشن نہیں کیا کہ کس کی ممی کو, تیری کہ میری. کیوں وہ دوڑ کے اپنی ممی کو بلا لاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یدی انہیں اپنی ممی کو بلانا ہوتا تو میرے سے ایک کہتے کہ دادی کو بلا. گھر میں جو رشتے داریاں چلتی ہیں وہ کس کے حساب سے چلتی ہیں, کیوں اپن اپنے سالے کو ماما جی کہتے کہ نہیں کہتے. بچے کی طرف سے بولتے نا کیوں ماما کو, ماما جی کو بلا. رسوئی سے بھی کہتے ہیں ماما جی نے چائے پی لی. کون سے ماما جی, کس کے ماما جی, بے ماما جی اپنے ہوتے ہیں, اپنے تو کبھی کے مر گئے. ویسے بچوں کے ہی ماما جی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. بالکل چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے جو بولنا نہیں جانتا, اپنی بھاشا سب اس کی طرف سے ہی ہو جاتی ہے. اس کی نانی ہے تو اپن بھی اسے نانی کہیں گے. چلتے ہیں نہیں, لیکن بھاو گھر والوں کا چلتا ہے, بزرگوں کا چلتا ہے. ایسی جنوانی میں اتوا جب تتو کا پرادن کریں تب بھاشا شروتاؤں کی اور بھاو بکتاؤں کا. ایسا کیوں ہوا دیکھو, کن کن نے پراکرت میں لکھا, کیوں اس سمے کے لوگ پراکرت بھاشا چلتی تھی. پھر سنسکرت میں لکھا, کیوں ہوا آپ جانتے ہیں کیسے ہوا یہ سب معاملہ. ایک 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 میں تھوڑی سی یہ بھی سمجھا دوں, تھوڑی پرکتی بھاشا کی. پرکتی مانے پراکرت, پراکرت مانو پرکتی سے. تو بھاشا کی پرکتی کیا ہے, جو ندی کی پرکتی ہے وہ بھاشا کی ہے. جیسے ندی کا پانی بہتا رہتا ہے وہ بہتا رہتا ہے تو نرمل رہتا ہے, اور جہاں پانی اکٹھا ہوا وہ گندا ہونے لگتا ہے. تو ندی کسے کہتے ہیں, पानी के समुदाय का नाम नदी नहीं है, झील है, समुद्र है, तालाब है, तो बहते हुए पानी का नाम नदी है। तो भाषा काय का नाम है, बहते हुए प्रवाह का। अब क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा बहने लगती है और तो बहुत सारी जनता उसे बोलने लगती है तो उसमें बहुत गड़बड़ियां होने लगती है। सब लोग पंडित तो होते नहीं, समझदार तो होते नहीं, तो चाय जैसे प्रयोग करते हैं कैसे भी। तो फिर वैयाकरणों को चिंता होती है कि इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वे उस भाषा का संस्कार करते हैं और उसे व्याकरण में बांधते हैं। इसलिए जब उस प्राकृत भाषा को संस्कार किया गया और नियमों में बांधा गया तो उसका नाम पड़ गया संस्कृत, माने संस्कार की हुई भाषा। देखो पहले प्राकृत जो नेचुरल, अब वो प्राकृत जो बांध दी नियमों में वो तो हो गई संस्कृत, और जो बहती रही वो हो गई अपभ्रंश, वो भ्रष्ट हो गई ना, भ्रष्ट भाषा भ्रंश हो गई ना, अभ्रंश, समझ गया ना। और एक तरफ संस्कृत चलती रही, एक तरफ अभ्रंश चलती रही। और जैनाचार्यों ने हमेशा उस भाषा में लिखा जो जनता की भाषा थी। ये बांधना क्यों जरूरी है जरा यह भी समझ लो, क्योंकि हमें हजारों मील दूर और हजारों वर्ष आगे पीछे तक अपनी बात पहुंचानी है तो उसकी बात हमें समझनी है। ऐसी बदलती भाषा में ही हम बात करते रहेंगे तो भाषा तो बदल जाएगी, हजार वर्ष बाद उसका अर्थ कोई समझने वाला नहीं रहेगा, हजार कोस दूर पर कोई बात नहीं समझेगा, लेकिन वो नियमों में बंधी होगी। जब उसमें कोई लिखेगा तो हजार वर्ष बाद वाला भी समझ लेगा, हजार कोस दूर वाला भी समझ लेगा। इसलिए साहित्य की भाषा संस्कृत बनी रही, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं थी, समझा। लेकिन फिर यह समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई कि एक वैयाकरण था और एक न्यायशास्त्र का विद्वान था, न्यायाचार्य और एक व्याकरणाचार्य। तो न्यायाचार्य बाजार में गया और उसने कहा कि दही देना, दही खरीद हलवाई की दुकान से, और दही ले लिया उसने, उसमें कुंडल कुल्लड़ में जिसमें भी दिया होगा। फिर वो सोचने लग गया, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा, घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार पर घी है, ये वो सोचते हैं ना, अपना आधार आधे भाग घटित होता है या नहीं। गुरुदेव ने वह समझाया, गुरुदेव जी भी कहते आधार आधे भाग किसमें, आधार आधे भाव किसमें है, आधार आधे भाव। तो द्रव्य आधार है और पर्याय आधे है कि पर्याय आधार है और द्रव्य आधे है, आधा कि नहीं आधा, बोलो कौन सी कथा में आता समझी जी। तो अब हम कहें नहीं, द्रव्य तो बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज आधार होती है और वो आधे होती है, तो नहीं कहते समझ में पर्याय आधार बनती है और द्रव्य आधे इसके आधार पर हमने ये बात समझी, बोलते कि नहीं बोलते। हमें दिनागम का आधार है, तो उसने वह बोला घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा परीक्षितव्यम एतद्, इसकी परीक्षा की जानी चाहिए कि घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार में घी है। तो शुद्ध निश्चय में वाला तो बोला कि स्वयं प्रतिष्ठित है, घी है, घी है तो बर्तन है बर्तन, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहता ही नहीं है। जब आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है ना, ऐसा सब वस्तुएं स्वयं प्रतिष्ठित है। तो परीक्षा, तो उसने कहा परीक्षा करो तो इसे उल्टा करो, तो इसे बर्तन उल्टा कर दिया तो वो दही नाली में सिकी थी, तो लौट के वापस आ गए और बिना दही के ही खाना खाना पड़ा। और फिर वो भैया कहने गया तो उसने कहा दही, تو وہ کہ دہی لو دہی بول رہی تھی دہی بیچنے والی تو کہ نہیں اس میں یہاں پہ پیر لگتا ہے تو کیوں لگا رہی یہ دتی شبد نہیں ہوتا دتی شبد بھول ہے دہی شبد بھول نہیں ہے یہ ہا کیسے لائی یہ مہا پران ہے یہ الپ پران ہے کیوں الپ پران کا لوپ نہیں ہوتا کیوں دا میں ہا ملاؤ تو دھا بنتا ہے اور وہ مہا پران کہلاتا ہے دا ہے الپ پران اور دھا ہے مہاپران جانتے ہو تم لوگ کیوں سب ودیارتھی جانتے ہوں گے نا ذرا ہاتھ اٹھانا مجھے معلوم پڑے الپ پران اور مہاپران میں کیا فرق ہے کیا بات ہے سب بیٹھے دیکھو کا ہے الپ پران کھا ہے مہاپران گا ہے الپ پران گھا ہے مہاپران یہ کیا ہے ہر جو پانچ پانچ بہن ہوتے ہیں پانچ اکثر کے تو پہلا اکثر الپ پران پہلا اور تیسرا اور دوسرا اور چوتھا مہاپران اور پانچواں انوناسک ٹھیک ہے یہ کیسے بنتا ہے یہ انگریزی والوں نے 26 اکثر کیسے کر لیے ہمارے 52 کے 26 کیسے رہ گئے ان کے پاس ان نے کیا 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 کہ ایک ایس سے کام چلایا آپ بھی ایس سے ہی کام چلا رہے ہیں نا ابھی ایس مانے پنڈت حکم تھے انہوں نے کہا کا تو کے مانے کا اور کے میں ایچ ملا دو تو کھا ہے نا ہم نے تو اسے الگ مان لیا کھا کو ان نے ایچ سے کام چلایا پھر جی مانے گا اور جی میں ایچ ملا دو تو گھا ٹھیک ہے اب سمجھ لو پی مانے پا اور پی میں ایچ ملا دو تو پھا تو جس میں ایچ ملا ہو وہ سب مہا پران اور جس میں ایچ نہیں ہو وہ سب الپ پران تو دہی اس میں ہی رہ گئی نا ایچ تو جس سے ملا کر کے مہا پران کیا تھا وہ مہا پران ہو جاتا ہے کٹھور شبد اس لیے کابی کی بھاشا میں چھند کا اسٹارٹ مہا پران سے نہیں کرتے ہیں الپ پران سے کرتے ہیں کیوں کہ ایک دم شروع میں آواز میں بدن لگانا پڑتا ہے کا کھا گڑبڑ ہو گئی نا تو کھا سے چھند شروع کریں گے مزہ نہیں آئے گا اسے بہت بہت باتیں ہیں سمجھ گئے نا اس لیے ان کے 26 رہ گئے ایسی ترکیب ترکیب سے انہوں نے اکثر کم کر لیے اور ایک اکثر سے ملا کر کے انہوں نے 10 اکثر کا کام نکال لیا تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیا ویاکرن وہیں لگاؤ جنوانی میں شاستر میں مرم سمجھنے میں اب سبزی لینے جاؤ دہی خریدنے جاؤ تو وہاں یہ مت لگانا نہیں تو تم بنا دہی کے کھانا کھانا پڑے گا سمجھیں گے نا یعنی ویوہار میں ویوہار جیسے رہنا اور سدھانت میں سدھانت جیسے رہنا کیا گدی پہ کبھی یہ مت بولنا کہ ماں باپ اپنے ہیں بھائی بہن اپنے ہیں بال بچے اپنے کوئی کسی کا نہیں ہے تو ہی صوفہ دے گی گدی پر اور گھر پہ جا کے ایسا مت کہہ دینا نہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لوگ مذاق اڑانے لگے کہ پنڈت کے دکھانے کے بھتا الگ ہوتے ہیں گھر کے الگ ہوتے ہیں دکھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں ارے بھائی وستو کے سوروپ میں یہ بات ہے ہم ویاکرن پڑھائیں گے نیا پڑھائیں گے تو یہ سب باتیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے اور دنیا سے بات کریں گے تو وہاں الپ پران مہا پران کی بات کریں گے وہاں تو جس بچہ توتلی بھاشا میں بولتا ہے تو ہمیں اس توتلی بھاشا میں بولنا پڑے گا ہم پانی بولتے ہیں وہ مانو بولتا ہے ہم کہیں مانو چاہیے مانو دے دے اسے یہ نہیں چلے گا کہ مانو شبد کا ہوتا ہی نہیں ہے کسی دشمنی میں مانو نہیں ہے اور یہاں کون کہتا ہے مانو سب کون سی بھاشا کا ہے ہی نہیں اپنے گھر بیٹھو وہ بچے کے ساتھ تو مانو ہی سے کام چلانا پڑے گا وہ جس جو بولے گا اس کو بھیجو اور بھیا گرن کیا کرے گا ہاں وکلپ سے اے بھی ہوتا ہے جو وکلپ سے آتا ہے نا دو دو روپ آتے ہیں تین تین روپ آتے ہیں وہ یہی چکر ہے وکلپ اور اس میں آتا ہے اتر ویتپتی اور دکشن ویتپتی اس کا کیا ارتھ ہے کہ اس کو اتر میں ایسا بولا جاتا ہے और दक्षिण में ऐसा बोला जाता है, जैसे कि लोहारिया, पहाड़िया, काला, ये उत्तर व्युत्पत्ति में अंत में आ बड़ा आ हो जाता है, ये उत्तर व्युत्पत्ति है। और दक्षिण व्युत्पत्ति के आ की जगह ए हो जाता है, पहाड़े, लोहारे, काले, गोरे, ये सब लिखा है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि मैं अभी गप नहीं ठोक रहा हूं, ऐसा क्यों हो गया? वो दक्षिण में ऐसा हो जाता है, उत्तर दैयाकरण को ने मान लिया कि दो दो होता है, दो रूप होते हैं, उन्हीं को लोहारिया को ही लोहारे कहते हैं, पहाड़िया को ही पहाड़े कहते हैं। आप समझे ना, ऐसी बात है। यहां देखो कहां चल रहा था भैया अपना, पुराने कर्म का जो उदय आया, नीचे तीन लाइन है, 18 पेज पे, 218 पेज, यह नवीन कर्म के बंध का हेतु है, क्योंकि अज्ञानी जीव जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के साथ क्षणिक राग के भाव को एक मानकर परिणमता है, तब उसे पुराने देवकर्म का उदय निमित्त होता है। जब वो परिणमता है, वो राग रूप परिणम है, तो पुराने देवकर्म को उदय कहें, और नहीं तो काय का उदय, ठीक है, कर्म का उदय कर्म में होगा, आत्मा का आत्मा में होगा, और उस रागादि को नवीन कर्म का बंध होता है। इस प्रकार पुराना कर्म नवीन बंध कर्म बंध का कारण होता है, विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए यह कहा है कि पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु है। परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर विभाव रूप से परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ही पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का हेतु बनता है, सम्य दृष्टियों को नहीं बनता है। तो पुराना क्रोध कर्म का उदय आया, अब वो मान लीजिए, देखिए थोड़ा बताऊं, थोड़ा सा करुणानियों की बात करता हूं, अभी समय तो है ना। हाँ, कि जब अपन कर्म बांधते हैं ना, तो पुण्य पाप बनता रहता है, ऐसा नहीं हमेशा पुण्य पुण्य बनता रहता, पाप भी बनता रहता है साथ में, क्योंकि उस टाइप के भाव भी होते रहते हैं ना अपने, अशुभ भाव भी, पांच इंद्रिय के विषय सेवन के भाव भी होते रहते हैं, और वो पाप भी बनता रहता है, पुण्य भी बनता रहता है। अभी मान लो देवायु का बंध हो गया, तो देवायु का बंध होते ही देवगति को साथ में बंध नहीं पड़ेगा, देवगत्यानुपूर्वी को बंध नहीं पड़ेगा, और जब देवगति में पहुंच गए, अब वहां सारा वातावरण बिल्कुल सेट है कि जो देवांगना है वो नक्की है, माँ बाप नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं, आप समझे ना, जितना पैसा है जिंदगी, जो पैसा माने परिग्रह जो भी है, वो जिंदगी में जितना है उतना ही रहेगा, घटा बढ़ा नहीं सकते, सब कुछ नक्की है ना। अब वहां पाप का उदय आके करेगा क्या? तो इनसे कहेंगे, तो ये कहेंगे साहब वो संक्रमण हो जाता है, वो पाप भी पुण्य रूप से बदल जाता है। अब इससे क्या अर्थ हो गया उसका? अब एक आदमी ने थोड़ा पुण्य भी किया था और नरक में पहुंच गया, अब वहां कोई ऐसे संयोग ही नहीं है, अब वहां वो पुण्य का उदय आएगा तो वो पाप के रूप में बदल किया जाता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि पापियों का पुण्य भी पाप बदल हो जाता है, और धर्मात्माओं का पाप भी पुण्य रूप बदल जाता है। क्यों? कि वो भी एक नियम है कि हमेशा अल्प मत बहुमत में मिल जाता है। आप समझे ना, एक श्वेतांबर मंदिर है, 1000 घर श्वेतांबरों के हैं, 2 दिगंबर रहते हैं, तो वे अपने श्वेतांबरी मंदिर जाने लगते हैं, वो चाहते पढ़े करें क्या करें, मेरे बच्चे बिल्कुल संस्कार ही नहीं रह जाएंगे, और दिगंबरी दिगंबर हैं, श्वेतांबरों के 2 घर हैं, तो वे दिगंबरों में आने लगते हैं। हमेशा बहुमत अल्पमत को खींचता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि 1 किलो बूरा तो समझते ना, चीनी का घोंट के बनाते हैं ना, और 1 तोला राख उस बूरे में मिला दो तो राख भी बूरा हो जाएगी, और 1 किलो राख और 1 तोला बूरा उस बूरे को राख में मिला दो तो बूरा भी राख हो जाएगा, तो इसका नाम संक्रमण है, वो उस रूप बदल जाता है। तो अभी तुम्हारा ये क्या काम आएगा पुण्य? तुमने थोड़ा बहुत कर लिया और पाप के जाने की सारी तैयारी है नरक में जाने की, तो ये पुण्य भी भाई साहब पाप में बदल के आएगा, कि थोड़े पुण्य पाप के चक्कर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, अब हम ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा पुण्य करेंगे, पाप कम गया। अरे तुम्हारे करने से क्या होता है, क्योंकि मेरे को अनुकूल संयोग रहे, अनुकूल संयोग माने भोग की अनुकूल सामग्री, तो ये तो पाप भाव है। क्यों कि मैं ऐसा करूंगा तो जिसको तू करने की कह रहा है उससे बचने के लिए, वो तो पाप भाव है। इसलिए भैया ये तेरे लिए करने से कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ये समझ में आया ना। मैं पढ़ने दे, पर इसलिए पुराना कर्म नवीन बंध का कारण होता है। किसके मुच्छा दृष्टि को विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह कहा है कि पुराना कर्म उदय नवीन कर्म के बंध का हेतु है। परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ही पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु बनता है। अब आगे ने क्लियर बात लिखी ना यहाँ। अब प्रश्न, ये गुरुदेव का कोटेशन खत्म हो गया, अब अपन प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। द्रव्य प्रत्यय रूप पूर्व कर्म के उदय में मिथ्यात्वादि रूप भाव प्रत्यय होंगे और उनके उदयानुसार नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होगा, यानी स्थिति ऐसी है। यदि ऐसा माना जाए तो संसार का कभी अभाव ही ना होगा और मुक्ति का मार्ग सदा अवरुद्ध ही रहेगा। अब मुक्त लिखा इसमें, ई की लगा देना, और मुक्त ही रखना हो तो मुक्त होने का मार्ग कभी नहीं मिलेगा, ऐसा लगा लेना। प्रूफ की गलती है, समझे। अब एक प्रश्न है उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं की टीका में इस प्रकार दिया है। अब जयसेन को कोट किया तो ऐसा जो प्रश्न खड़ा होता है उसका उत्तर उनने दिया है, अमृतन ने नहीं दिया और किसी ने नहीं उठाया, तो अपन ने वो वहां से ले लिया है। तो इसके आप इसे पढ़ेंगे तो जयसेन को भी पढ़ लेंगे, अमृतन को भी पढ़ लेंगे, पांडे राजमल जी को भी पढ़ लेंगे, बनासी दास को भी पढ़ लेंगे, पांडे रतन जी छाबड़ा को भी पढ़ लेंगे और स्वामी जी को भी पढ़ लेंगे और सौ कुंद कुंद को तो पढ़ेंगे ही। इतने लोगों को आप पढ़ लेंगे, समय सार अनुशीलन पढ़ेंगे। आप समझ रहे कि दत्ता होमचंद को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इतने लोगों को पढ़ेंगे और उस जो विषय चल रहा है उससे संबंधित इतने लोग वहां हाजिर रहेंगे, सब जगह नहीं, जहां जहां उनमें अलग अलग कोई बात कही गई होगी, तो और बेई की बेई बात कही गई हो और उसे हम बार बार कहेंगे तो आपको रिपीटेशन का दोष लगेगा, हैं? इसलिए ये जरूरी नहीं है क्या कहे ये हर हर कलश को हम दें, हर गाथा को दें, हर देशाचारी को दें, हमें आप समझे ना, वो जरूरत नहीं है बिल्कुल। जब जब नई बात है जहां जरूरत है वहां देना बस खत्म। इसका भावार्थ यह है, भावार्थ लिखा ना कि द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादि भाव प्रत्ययों के रूप में परिणमन करता है तभी नूतन बंध होता है। केवल द्रव्य प्रत्ययों का उदय मात्र से बंध नहीं होता। जिस प्रकार घोर उपसर्ग होने पर पांडवादि मुनिराज अपने स्वभाव से चित्त नहीं हुए, रागादि रूप परिणमित नहीं हुए, तो उन्हें द्रव्य प्रत्ययों के उदय होने पर भी नवीन बंध नहीं हुआ। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। तो कर्म कर उदय तो इतना तीव्र राजा का उपसर्ग हुआ ना, और उन्हें पांडवादि उन्हें तो वो उन्हें तीन पांडव ले लो और जहां भ्रष्ट हो गए वहां दो पांडव लेना, समझ ना। यदि द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध मान लिया जाए तो फिर सदा संसार ही रहेगा, मुक्ति कभी होगी ही नहीं, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा रहता ही है। ये जैसे समाप्त है। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय में जब जीव स्वयं विकारी भावों रूप परिणमित होता है तब कर्म का बंधन को प्राप्त होता है, किंतु जब यह जीव कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके विकार रूप परिणमित नहीं होता, निर्विकार ही रहता है, सम्मद दर्शन ज्ञान चात रूप परिणमन करता है, तब आगामी बंध नहीं होता। अतः आत्मार्थियों को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। अब अगली कथाएं कल अपन चलाएंगे।